गीता, आप COP26 जलवायु सम्मेलन में भाग लेने ग्लासगो गई हुई हैं, क्या गहमा गहमी है वहाँ? आप खासतौर पर किस कार्रवाई से जुड़ी हुई हैं?
यहाँ मैं COP26 ग्लासगो में ग्लोबल फोकल पॉइंट हूँ यंगों की. यंगो मैकेनिज्म है युवाओं के लिए, दुनिया भर के युवाओं जो है 35 साल के अंदर, हम उनके साथ वॉलंटियर में काम करते हैं, वी इंश्योर कि यहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन है. हमारे साथ यहाँ आज कम से कम 200 दुनिया भर से युवा आए हैं और यहाँ से हम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ उनके साथ, उनके रिप्रेजेंटेशन UN में और युवाओं के बीच में.
अब ये सम्मेलन खत्म होने को है, ऐसे में आपका क्या आकलन है, कितना सफल रहा ये सम्मेलन? क्या नेट जीरो की लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता नजर आ रही है यहाँ?
हाँ, नेट जीरो के लिए काफी बातें तो हो रही है. वर्ल्ड लीडर समिट भी था यहाँ पिछले हफ्ते में, पहले 2 दिन, और दुनिया भर के लीडर्स आए थे. लेकिन अभी इस कॉप में जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ जो पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में बनी थी, पेरिस एग्रीमेंट का रूल बुक नेगोशिएट हो रहा है, उसका फाइनल टेक्स्ट थोड़ा सा बाकी है. जो 2018 में काफी कुछ कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें है, मार्केट मैकेनिज्म्स, फाइनेंस, वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं. तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कल तक क्या चल रहा है, इज इट गोइंग टू बी कंप्लीटेड, और ये कंप्लीशन होने के बाद भी ये फिर भी टेक्स्ट में है, उसके बाद एक्शन वापस घर जाके, ईच कंट्री हैज टू गो एंड डू देयर ओन थिंग. तो हर देश को देखना है कि वो क्या अपने NDCs, अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, उसको और बढ़ावा दे सकते हैं और काम कर सकते हैं, और ये कैसे होगा वो कब के बाद देखा जाएगा. लेकिन अभी तो मेन है कि क्या ये रूल बुक हम कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते कल तक.
आपका ये जो सफर है वो 2015 में पेरिस में जलवायु सम्मेलन यानी COP21 में भाग लेने से शुरू हुआ था, तब से अब तक क्या बदलाव नजर आया आपको आकांक्षाओं और प्रतिबद्धताओं में? खासतौर पर
मेरे युवाओं की तरफ से देखे तो काफी 2015 में भी काफी युवा थे, काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद अब पिछले 3-4 साल में इतना अटेंशन आ गया है, ग्लोबल अटेंशन, मीडिया का भी अटेंशन है, युवाओं का भी अटेंशन है, सारी तरफ से लोग देख रहे हैं कि यहाँ कॉप में हो क्या रहा है, क्या हम ये जो प्रॉमिस जो हमने की थी 2015 में, क्या हम वो आज कल तक पूरी कर पाएंगे या नहीं. 2015 में दुनिया भर के गवर्नमेंट्स अलग थे, काफी लीडर्स अलग थे, तो उनके माइंडसेट अलग थे. इस बार काफी माइंडसेट अलग है, और हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक जब हमने कुछ नेगोशिएशन आइटम्स SBI और SBSTA सबस्टार्ट जब खत्म किया, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात जो थी वो पूरे टेक्स्ट में से निकाली गई थी, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के टेक्स्ट में से. तो प्रोग्रेस है, काफी कुछ चीजें हो रहे हैं, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट, एंड वो क्या है वो हम देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ह्यूमन राइट्स, जैसे जेंडर, जैसे युवाओं की इंक्लूजन टेक्स्ट में रहे, और कल तक जब हम ये पेरिस रूल बुक जब खत्म कर पाए, पेरिस एग्रीमेंट वर्क प्रोग्राम जो बोल रहे उसमें अगर ये सब चीज इंक्लूडेड है या नहीं है, वो अभी भी उसके लिए काफी काम चालू है और काफी कुछ चर्चाएं चालू है और नेगोशिएशंस भी चल रही है.
तो युवा जलवायु कार्यकर्ता के रूप में आप भारत में किन किन गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं?
मैं भारत में मेरा अपना खुद का क्लाइमेट एजुकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि मैं इतने सालों से जब मैं कॉप्स में आ रही थी, मैंने देखा कि इतनी सारी जो बातें होती है यहाँ पे, इतना सारा जो मोमेंटम हम बोलते हैं कि नो बिल्ड ऑन द मोमेंटम, उसके बाद जाकर उसका ट्रांसलेशन कभी लोकल में किसी को, इस दुनिया के बाहर किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका जागन अलग है, उनकी काम करने की चीज एकदम टेक्सचुअल है, और वो बाहर के लोगों को अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो बिल्कुल समझ में आती नहीं है. इसीलिए मैं क्लाइमेट एजुकेशन में काम करती हूँ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, ऑफकोर्स साइंस एक्सप्लेन करने में, पर उसके अलावा भी ये इंटरनेशनल प्रोसेस है, उसको हम कैसे अपने घर तक ले आए वो उसको ट्रांसलेट करने में काम करती हूँ. और उसके अलावा मैं वैसे भी दुनिया भर में एशिया पैसिफिक रीजन में और इंटरनेशनली यंगों से भी काफ़ी युवाओं के साथ काम करती हूँ ऑन एंगेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूथ एंगेजमेंट, जैसे कि UN के प्रोसेस में, लेकिन ऑल्सो बैक एट होम ग्रासरूट्स लेवल, उनको क्या जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, फाइनेंस, और अलग अलग लोगों से जुड़ने के बाद ये कोऑर्डिनेशन हम करते हैं.
वैश्विक तौर पर बात की जाए तो क्या लगता है अभी भी कौन से मुद्दे हैं जो अछूते हैं और जिन पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है?
एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे वैसे थोड़ी सी बातचीत हो रही है, फूड सिस्टम्स पे, हमारे फूड प्रोडक्शन पे क्या है, कैसे है. ज्यादातर अभी तो अटेंशन सबका एनर्जी ट्रांजिशन पे है, विच इज गुड, जरूरत है एनर्जी ट्रांजिशन की. लेकिन जो हम एक बहुत बड़ी चीज भूल रहे हैं वो है हमारा फूड सिस्टम्स, और 30% of global emissions, मतलब सारे emissions, उसके 1/3 emissions are coming from the food systems. और उसकी अभी इतनी चर्चा नहीं हो रही है. ऑफकोर्स बातें चल रही है, यूएन ने कुछ महीने पहले यूएन फूड सिस्टम समिट होस्ट किया था न्यूयॉर्क में. फिर भी यहाँ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में एग्रीकल्चर बस एक छोटा सा भाग है और इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है उसको. एंड आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन को और भी थोड़ा सा बदलाव बहुत जरूरी है. सारे देशों को साथ में आना चाहिए, देखना चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एज अ होलिस्टिक सोल्यूशन, ऑल्सो टू डील विद द इंक्रीज पॉपुलेशन. जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स है वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ हमारे फूड सिस्टम्स पे क्या इम्पैक्ट है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इन अ मोर होलिस्टिक मैनर. ये सारा बातें हो रही है बट नॉट इनफ अटेंशन येट.
तो एक युवा कार्यकर्ता, जलवायु कार्यकर्ता होने के नाते आपको इस सम्मेलन से क्या उम्मीद है? क्या लगता है कि कल जब ये इसका समापन होगा तो इससे क्या कुछ निकल कर आएगा?
एक युवा की तरफ से तो हम यही देखते हैं कि हमारा यहाँ जो कुछ भी बातें हो रही है, इसके जो कुछ भी डिसीजंस हो रहे हैं, उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे है, आने वाले जनरेशंस पे है. तो बिगेस्ट चीज यही है कि क्या हम ये टेम्परेचर राइज जो 1.5 डिग्रीज की बात हो रही है, क्या हम उसको सच में कर सकते हैं? कैन वी रिस्ट्रिक्ट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5? 2 डिग्री की तो बात काफी दूर तक है. तो अभी चर्चा तो 1.5 पे हो रही है. लास्ट पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि 2 डिग्री की बात इतनी नहीं हो रही है ये कॉप में, विच इज अ गुड साइन. लेकिन बातों के अलावा एक्शन ज्यादा जरूरत है. तो एक तो वही है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम यही सोचते हैं कि जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं, ये जो चेंज हम कर रहे हैं, उसके इफेक्ट जो हमारे जनरेशन पे, हमारे आने वाले पीढ़ियों पे होने वाली है, उनकी तरफ से उनका वॉइस इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. हमारे जो व्यूज है, हमारे जो व्यू पॉइंट्स है, हमारे जो एक्सपर्टीज है, उनको लेकर साथ में बैठ के डिसीजंस बनाए जाए. हमारे लिए डिसीजंस नहीं, लेकिन हमारे साथ डिसीजंस बने. दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव बीन वर्किंग फॉर. इसीलिए हम यहाँ इस बार इस कॉप में करीबन 200 यंग, देश भर से, दुनिया भर से यंग पीपल, युवाओं को लेकर आए हैं इसी चीज के लिए कि सारे दुनिया भर के युवा, उनके वॉइसेस यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जुड़ी जाए.
भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है जलवायु कार्यवाही पर एक युवा कार्यकर्ता के रूप में? आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी?
मेरे लिए यही है कि आगे जाके हम जो यही जो बातें हो रही है, we really have to put it into action. ये भी है कि हम किस तरीके से ये कर रहे हैं, इज इट इन अ जस्ट मैनर, इज इट इन अ मैनर कि हम सब इंडिजिनियस कम्युनिटीज, वुमेन एंड जेंडर, अलग अलग जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल है, उनके क्या हम उनके उनको साथ में लेकर कर रहे हैं? ये जो ट्रांजिशन है, क्या हम सोच के कर रहे हैं या ऐसे ही ट्रांजिशन कर रहे हैं, और कितना ट्रांजिशन हो रहा है? हमने इतने सारे फाइनेंस के बारे में सोचा है, बात हो रही है, और पेरिस में 2015 से बात हो रही है $100 बिलियन फाइनेंस गोल, और वो आज तक हुई नहीं है, देख नहीं रहे, आज तक बातें हो रही है. और अभी हम देख रहे हैं कि शायद से इस साल नहीं, लेकिन 2022 या 2023 में वो फाइनेंस गोल देखेगा, मतलब वो पैसे फाइनली फाइनेंस फ्लो देखेंगे. और उसके अलावा उसके ऊपर से और भी कुछ काफी प्लेजेस हुए हैं इस बार इस कॉप में. तो ये सारे प्लेजेस बस पेपर पे नहीं, बस शब्दों में नहीं, बट इट हैज टू गो इनटू एक्शन. मेरी वही लक्षण है कि आगे जाके भी इसको फॉलो करें, इसको देखें कि हम जो भी आज बात कर रहे हैं, जो भी कमिटमेंट्स आज बना रहे हैं यहाँ ग्लासगो में, उसको इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्ट रोड मैप हो और बस वो हवा में आर्बिट्ररी कमिटमेंट्स ना रह जाए.